दिन भर 5 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूं वात्सल्य राय। भारत और रूस के बीच 8 समझौते, S-400 डील पर भी दस्तखत, आपसी संबंधों पर बोले मोदी।
भारत की विकास यात्रा में रूस हमेशा हमारे साथ रहा है।
यौन हिंसा के खिलाफ अभियान चलाने वाले 2 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को नोबेल शांति पुरस्कार।
Nadia Murad is herself a victim of war crimes.
और विवेचना में रिहान फजल से सुनिए मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात की हत्या की कहानी।
मैं मिस्र में रहा हूँ 5 साल, जहाँ सादात की हत्या हुई मैं वहाँ कम से कम 50-60 बार आया गया हूँ, तो जब भी गुजरता तो वो मंजर मेरे आंखों के सामने आता था।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार कुलदीप मिश्र से। भारत और रूस के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत भारत रूस से सतह से हवा में मार करने वाला S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदेगा। रूस से हथियार न खरीदने की अमरीकी चेतावनी के बावजूद भारत ने यह समझौता किया है। $5 बिलियन यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए का यह समझौता नई दिल्ली में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात के दौरान किया गया। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार कांगो के महिला रोग विशेषज्ञ डेनिस मुकवेगे और यजीदी महिला अधिकार कार्यकर्ता नादिया मुराद को मिला है। नादिया को ये पुरस्कार बलात्कार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए दिया गया है। 25 वर्षीय नादिया मुराद को इस्लामिक स्टेट ने 2014 में अगवा कर लिया था और 3 महीने तक बंधक बनाकर उनका बलात्कार किया गया था। विजेताओं को दिसंबर में ओस्लो में $1 मिलियन यानी करीब 7.5 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि मिलेगी। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता एलेसेंड्रा वलूची ने इस ऐलान का स्वागत करते हुए कहा,
This is really a fantastic announcement and I think we can all congratulate the winners.
यह सच में शानदार घोषणा है। हम दोनों विजेताओं को बधाई दे सकते हैं। ये मुद्दा संयुक्त राष्ट्र के लिए बेहद अहम है और आप जानते हैं कि इस दिशा में हमारा एक विशेष प्रतिनिधि काम कर रहा है। मैं सुनिश्चित हूँ कि इससे संघर्ष के एक हथियार के रूप में यौन हिंसा को खत्म करने में मदद मिलेगी। ये थे संयुक्त राष्ट्र की प्रवक्ता एलेसेंड्रा वलूची के शब्द। इंडोनेशिया के अधिकारियों का कहना है कि भूकंप और सुनामी से प्रभावित हुए पालू शहर में एक सरकारी रिहायशी इमारत के मलबे में 1,000 से भी ज़्यादा लोग दबे हो सकते हैं। हफ्ते भर पहले इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी से पालू शहर सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। राहत और बचाव कर्मियों ने अब उन जगहों पर अभियान तेज कर दिया है जहां पहुंचना अब तक मुश्किल था। हालांकि अब भी शहर का काफ़ी हिस्सा कटा हुआ है, क्योंकि सड़क का एक बड़ा हिस्सा तबाह हो गया है। इस आपदा में 1400 से ज़्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। मलबे में अपने प्रियजनों को तलाश रहे रिफ्की अल महदली ने कहा,
कुर्बान यह कुलवर्ग साया बारो डी तमु।
मैं यहाँ लाशें तलाश रहा हूँ, अपने परिवार की लाशें। कल मुझे मेरी माँ मिल गई, अब मेरे पिता, मेरी पत्नी और मेरा भतीजा बचा है। यहाँ बहुत सारी लाशें हैं, 1,000 से भी ज़्यादा। ये थे इंडोनेशिया में आए भूकंप में बाल बाल बचे रिफ्की अल महदली के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। पाकिस्तानी प्रशासन ने बताया है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के छोटे भाई और मुख्य विपक्षी नेता शहबाज शरीफ को भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि आशियाना आवास योजना से जुड़े एक मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है और तब वह पंजाब प्रांत के मुख्यमंत्री थे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नेता शहबाज शरीफ ने आरोपों से इनकार किया है। इससे पहले उनके भाई और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के ही एक मामले में अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी, पर एक अदालत ने पिछले महीने ही उनकी रिहाई का आदेश दिया। फ्रांसीसी पुलिस इंटरनेशनल पुलिस संस्था इंटरपोल के अध्यक्ष के लापता होने के मामले की जांच कर रही है। माना जाता है कि चीनी नागरिक मेंग होंगवेई ने पिछले महीने चीन के लिए उड़ान भरी थी। उनकी चीनी पत्नी का कहना है कि उन्होंने तब से उनके बारे में कुछ नहीं सुना है। एक फ्रांसीसी अधिकारी ने कहा है कि वह फ्रांस में लापता नहीं हुए। मेंग होंगवेई 2016 में इंटरपोल के पहले चीनी अध्यक्ष बने थे। अमरीकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने अपने एक सहयोगी पत्रकार के लापता होने पर विरोध स्वरूप अपना एक कॉलम खाली छोड़ा है। अखबार का कहना है कि वह जमाल खाशोगी को लेकर चिंतित है। खाशोगी मंगलवार को इस्तांबुल स्थित सऊदी अरब के वाणिज्य दूतावास गए थे, लेकिन उसके बाद से उनका कोई पता नहीं है। BBC समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं। दिन भर में सबसे पहले बात भारत और रूस के संबंधों की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच आज दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच 8 अहम समझौते हुए। भारत और रूस के बीच S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी समझौता हुआ। इन समझौतों और उनकी वजह से होने वाले असर पर जानकारी दे रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे।
दिल्ली के हैदराबाद हाउस में रूस के राष्ट्रपति पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद दोनों देशों की ओर से 8 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। राष्ट्रपति पुतिन ने दोनों देशों के व्यापार रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की बात की। इस मुलाकात में कई रक्षा समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें जमीन से हवा में वार करने वाले S-400 डिफेंस मिसाइल सिस्टम के $5 अरब के समझौते को भी मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी,
हमारी स्पेशल और प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को लगातार नई ऊर्जा और दिशा मिली है और वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को नए मायने एवं मकसद भी मिले हैं।
प्रधानमंत्री मोदी भले ही रक्षा समझौतों को एक अलग दिशा देने की बात कर रहे हों, लेकिन आज की संयुक्त प्रेसवार्ता में इस मिसाइल समझौते का जिक्र नहीं था। इसकी पुष्टि संयुक्त बयान में संक्षेप में की गई। भारत के लिए ये सौदा बेहद अहम है, लेकिन अब देखना होगा कि अमरीका की ओर से भारत पर क्या कोई कार्रवाई होती है या नहीं। वरिष्ठ पत्रकार सुहासिनी हैदर,
मुझे लगता है कि भारत शायद कोलिजन चाहता नहीं है, भारत शायद कॉन्फ्रंटेशन चाहता नहीं है, लेकिन इस मामले में क्योंकि जो कैट्सा लॉ है वो लॉ के तहत अगर आपको वेवर भी मिलेगा, सैंक्शंस में वेवर भी मिलेगा इस डील के लिए, आपको हर डील के लिए सैंक्शंस का वेवर नहीं मिलेगा, और आपको इस कंडीशन पे वेवर मिलेगा कि आप रशिया के साथ, ईरान के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ अपने जो भी ताल्लुक हैं उनको कम कर रहे हैं। तो अमेरिका के सामने तीन तरह के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि वो अभी कुछ ना करे, वेट कर ले कि जब पेमेंट होगा तब देखा जाए। आफ्टरऑल चीन के साथ, जब चीन ने S-400 लिया था तो डिलीवरी पे अमेरिका ने सैंक्शंस किए थे। दूसरा ऑप्शन है कि वो कहें कि हम आपको वेवर दे रहे हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा वेवर पे इतनी बंदिशें होंगी कि भारत भी शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा बहुतों को। और तीसरा ऑप्शन ये है कि वो सैंक्शंस डाल दें।
रूस भारत का पुराना दोस्त है जो सालों से भारत को हथियार बेचता रहा है। राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है कि आज के इस समझौते से भारत ये भी बताना चाहता है कि वो अपने रक्षा मामलों में किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा और रक्षा साजो सामान के लिए वो किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहता। विनीत खरे, BBC दिल्ली।
खबर सच है अगर BBC पर है।
अगली खबर भारत प्रशासित कश्मीर से। कश्मीर में नगर निकाय चुनाव के 3 दिन पहले यानी आज श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की गई। इनमें से 2 की मौत हो गई। कश्मीर घाटी में प्रमुख राजनीतिक दलों ने निकाय चुनाव के बहिष्कार का ऐलान किया है। इस वजह से कई जगह BJP के प्रत्याशी निर्विरोध चुने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस चुनाव से कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हो सकेगी? सुनिए श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
चुनाव से 3 दिन पहले ही श्रीनगर में संदिग्ध बंदूकधारियों ने 3 राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर फायरिंग की, जिनमें से 2 की मौत हो गई। सुरक्षा प्रबंध तो पहले से ही कड़े थे, परंतु अब प्रत्याशियों को सुरक्षित स्थानों से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। घाटी और जम्मू की 8,000 से अधिक पंचायतों और सैकड़ों नगरपालिकाओं के लिए होने वाले चुनाव के लिए 1,00,000 से अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है, परंतु पंचायत घरों में सन्नाटा है और बस्तियों में राजनीतिक जोश की जगह हर तरफ सुरक्षा कर्मियों का घेरा नजर आता है। कश्मीर के 624 वार्ड्स में 215 ऐसे हैं जहां प्रत्याशी निर्विरोधी जीत गए हैं। 170 से अधिक ऐसे वार्ड्स हैं जहां एक भी प्रत्याशी सामने नहीं आया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसे राजनीतिक भुट्टो ने चुनाव का बायकॉट किया, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है क्योंकि इसके 70 से ज्यादा प्रत्याशी निर्विरोधी जीत गए हैं। हिंदू राष्ट्रवादी गुट बीजेपी को पहली बार कश्मीर की पंचायतों और नगर पालिकाओं पर प्रभाव बनाने का मौका मिला है। पूर्व चरमपंथी फारूक खान उर्फ सैफुल्ला बीजेपी के टिकट पर श्रीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इनके इस निर्णय पर कुछ वर्गों में नाराजगी है, परंतु वो कहते हैं कि उन्होंने ये निर्णय सोच समझ कर लिया है।
मेरे ऊपर हुक्म कुफर लगाने से पहले मुझे ये बताएं, क्या कुरान के अंदर बीजेपी में इलेक्शन लड़ना गुनाह है? क्या मैं हराम कर रहा हूँ? क्या मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ? नहीं नहीं, किस बात की नदामत जनाब, किस बात की शर्म? मैं कोई चोर तो नहीं हूँ, मुझे शर्म आएगी या मैं किसी से डरता हूँ तो मैं इस वजह से कहूँगा कि नहीं मुझे शर्म आ रही है? कोई शर्म नहीं है, मैं प्राउड के साथ कह रहा हूँ मैं बीजेपी का कैंडिडेट हूँ।
पिछले कुछ हफ्तों के दौरान दर्जनों युवाओं को गिरफ्तार किया गया है और चुनाव के अवसर पर प्रदर्शनों को रोकने के लिए सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त किया गया है। अलगाववादी इस चुनावी प्रक्रिया को एक सैन्य अभ्यास कहते हैं। उन्होंने इसके विरुद्ध सोमवार को बंद का आह्वान किया है। अलगाववादी नेता मोहम्मद यासीन मलिक:
इलेक्शन में वोट देना इसी फौजी ऑपरेशन की वकालत हो रही है, इसलिए मेरी तमाम लोगों से अपील है कि वो इन इलेक्शनों से दूर रहे।
विश्लेषक भी हैरान है कि शांति के माहौल में चुनाव करवाने के बजाय चुनाव से ही शांति की आशा बांधी जा रही है। लेखक और विश्लेषक एजाज अयूब:
देखिए, इलेक्शन से अमन कायम नहीं होता है, अमन के बाद इलेक्शंस होते हैं। आप अगर ये चीज इस तरह से देखेंगे कि आप इलेक्शन करेंगे उसके बाद अमन होगा, मेरे ख्याल से ये एक गलत नजरिया है, क्योंकि जब तक आपको अमन नहीं होगा तब तक लोग इन्वॉल्व डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं होंगे।
सरकार का मानना है कि अतिरिक्त सुरक्षा प्रबंध और प्रत्याशियों के लिए सुविधाओं की घोषणा से 13 चरणों पर आधारित चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्वक होगी। चीफ सेक्रेटरी BVR सुब्रमण्यम:
400 कंपनीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस फॉर कंडक्टिंग द पंचायत इलेक्शंस ओवर एंड अबव what is already there in the state with JK police and central paramilitary forces. This is more than adequate to conduct the election.
Mr. Subramaniam कहते हैं सभी प्रत्याशियों को सिक्योरिटी प्रदान की जाएगी। सरकार का आश्वासन अपनी जगह, लेकिन इस चुनावी प्रक्रिया से लोगों में आशाएं कम और डर ज्यादा पाया जाता है। रियाज मसरूर, BBC श्रीनगर।
और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। साल 2018 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए दो लोगों को चुना गया है। ये हैं इराक की नादिया मुराद और कांगो के डॉक्टर डेनिस मुकवेगे। दोनों को ये पुरस्कार रेप को युद्ध हथियार के तौर पर इस्तेमाल से रोकने के इनके प्रयासों के लिए दिया जा रहा है। डॉक्टर डेनिस डॉक्टर मिराकल के तौर पर चर्चित हैं। उन्होंने करीब 2 दशक तक हिंसा पीड़ित महिलाओं की मदद की है। वहीं 25 साल की नादिया को साल 2014 में इस्लामिक स्टेट ने अगवा कर लिया था। वो करीब 3 महीने बाद बच निकलने में कामयाब रहीं। नोबेल कमेटी की प्रमुख बैरिट रेस अनारसन ने नादिया के साहस की सराहना करते हुए कहा,
नादिया मुराद इज हरसेल्फ अ विक्टिम ऑफ वॉर क्राइम्स। शी रिफ्यूज्ड टू एक्सेप्ट द सोशल कोड्स दैट रिक्वायर्ड।
नादिया मुराद खुद भी युद्ध अपराधों की पीड़ित हैं। उन्होंने उन सामाजिक बंधनों को मानने से इनकार कर दिया जिनमें कहा जाता है कि महिलाओं को चुप रहना चाहिए। उन्होंने अपनी पीड़ा बताने और दूसरे पीड़ितों की बात रखने में असाधारण साहस दिखाया। ये थी नोबेल कमेटी की प्रमुख। अगर आप नादिया मुराद के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो आइए bbchindi.com पर।
BBC इंडिया बोल।
विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए कानून बनाने की मांग की। RSS प्रमुख मोहन भागवत भी कर रहे हैं मंदिर के बाद। 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले क्या फिर गरमाई जा रही है मंदिर की राजनीति? इस बार इंडिया बोल में होगी इसी सवाल की पड़ताल। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार 6 अक्टूबर शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन करें 1811-7000 या 1811-7001 पर।
BBC इंडिया बोल।
विश्व हिंदू परिषद की पहल पर जुटे संतों ने सरकार से राम मंदिर के लिए कानून बनाने की मांग की है। सरकार को जनवरी तक का अल्टीमेटम भी दिया गया है। कल इंडिया बोल में इस मुद्दे पर आप भी रख सकते हैं अपनी राय। और अब वक्त है विवेचना का। मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति अनवर सादात को इसराइल के साथ शांति समझौता करने के लिए मेनाचिम बेगिन के साथ साल 1978 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उनकी इस पहल को उनके बहुत से देशवासियों ने पसंद नहीं किया था। साल 1981 में जब वो काहिरा में एक परेड की सलामी ले रहे थे, कुछ इस्लामी चरमपंथियों ने उनकी हत्या कर दी थी। क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी रेहान फजल।
6 अक्टूबर 1981, मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात यौम के पूर्व युद्ध के ऑपरेशन बद्र की 8वीं वर्षगांठ पर काहिरा में एक सैनिक परेड की सलामी ले रहे थे।
BBC न्यूज़ एट 6 o'clock। गुड इवनिंग, दिस इज पीटर डोनाल्डसन। President Sadat of Egypt is dead. He was assassinated at a military parade in Cairo, apparently by a group of his own soldiers, who opened fire on the...
6 अक्टूबर 1981 को सादात 8:30 बजे सोकर उठे। उन्होंने थोड़ी कसरत की, मालिश करवाई और नहाने चले गए। सादात पर बहुचर्चित किताब ऑटम्न ऑफ फ्यूरी, द असैसिनेशन ऑफ सादात लिखने वाले मिस्र के जाने माने पत्रकार मोहम्मद हिकाल लिखते हैं।
कुछ दिन पहले ही लंदन के उनके दर्जी ने उनकी नई वर्दी सिलकर भेजी थी। उनकी पत्नी जिहान ने नोट किया कि उन्होंने कोट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहन रखी है। सादात ने सफाई दी कि इससे उनकी नई यूनिफॉर्म की शक्ल बिगड़ जाएगी। उन्हें याद आ गया कि उन्होंने अपनी जेरूसलम यात्रा के दौरान भी बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, जिसकी वजह से वो और ज्यादा मोटे लग रहे थे। जब वो परेड पर जाने के लिए बाहर आए तो मेज पर रखा अपना फील्ड मार्शल का बेंत उठाना भूल गए। बाद में जिहान ने कहा कि ये भूल एक अपशकुन थी।
उस समय बॉब जोविंस काहिरा में बीबीसी संवाददाता हुआ करते थे। एक पत्रकार के लिए किसी सैनिक परेड को कवर करना बहुत बोझिल और रूटीन असाइनमेंट होता है, लेकिन इसके बावजूद वो उस परेड में गए क्योंकि वो अपने एक बेटे और उसके दोस्त को वो परेड दिखाना चाहते थे।
Well, all day, everything in Egypt's an all day. I mean, you had to get there, you had to go through security, you had to hang around before it started. But the parade itself went on for several hours. I mean, the army in Egypt was, is huge.
मिस्र में पूरे दिन का मतलब पूरा दिन होता है। आपको वहाँ सुबह सुबह ही पहुँचना होता है, अपनी सुरक्षा जांच करवानी होती है। वैसे परेड भी कई घंटों तक चली। मिस्र की सेना काफी बड़ी है और वो उस परेड में कई सौ टैंकों, मिसाइलों और युद्ध असलहों का प्रदर्शन कर रहे थे। राष्ट्रपति से लेकर सेना के बड़े बड़े अफसर और कई दूतावासों के सैनिक अटैशे वहाँ कड़कती धूप में बैठे हुए इस परेड को गुजरते देख रहे थे। इस तरह की परेड का आनंद तभी उठाया जा सकता है जब आपके साथ आपके बच्चे भी हों। इसीलिए मैंने तय किया कि मैं अपने साथ अपने छोटे बेटे, जो उस समय 10 साल का था, और उसके सबसे अच्छे दोस्त को परेड दिखाने ले जाऊंगा। पत्रकारिता की दृष्टि से ये कोई बहुत समझदारी वाला फैसला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि उन्हें परेड देखने में बहुत मजा आएगा। लेकिन इस परेड ने उन्हें हिला कर रख दिया और वो अपने पूरे जीवन उसे भूल नहीं पाए।
Two grenades exploded, and a group of soldiers jumped from a military truck taking part in the parade and ran towards the president, firing from Kalashnikov automatic rifles. In spite of the literally thousands of troops surrounding the president, the group of assassins continued firing for well over a minute. Then the security services swarmed into action. As the spectators stampeded out of the way of the shooting, the presidential bodyguard shot and killed two of the attackers and overpowered the rest. But the assassins managed to cut down at least 10 people, some of whom were killed. President Sadat was rushed straight to a helicopter which took him to the Mahdi military hospital.
Anwar Sadat par hamla karne walon ke ring leader the Misr ki sena mein Lieutenant Khalid Islamboli. Us din wo subah 3 baje sokar uthe the. Unhone godam se 4 machine guns ko nikal kar unhe load kiya tha और अपने साथी अब्बास मोहम्मद से कहा था कि वो उन मशीन गन्स पर कोई निशान लगा दे। अब्बास ने उनकी नालों पर कपड़े का एक टुकड़ा लगाकर उन्हें बाकी मशीन गन्स के बीच रख दिया था। मोहम्मद हिकाल लिखते हैं,
खालिद का ट्रक जैसे ही सलामी मंच के सामने पहुंचा, उसने अचानक अपनी पिस्टल निकालकर ड्राइवर की कनपट्टी पर लगाकर उसे ट्रक रोकने के लिए कहा। ड्राइवर ने वही किया जो उसे कहा गया था। उसने इतनी जोर से ब्रेक लगाए कि ट्रक तिरछा हो गया। ट्रक रुकते ही खालिद नीचे कूदा और उसने अफरा तफरी फैलाने के लिए दूर से ही सलामी मंच की तरफ हैंड ग्रेनेड फेंका। इस बीच अब्बास मोहम्मद ट्रक के पीछे के हिस्से से राष्ट्रपति की तरफ गोली चलाने लगा। उसकी पहली गोली सादत की गर्दन में लगी। जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ड्राइवर ने सलामी मंच के दूसरी तरफ कूद कर एक खंभे के पीछे आड़ ले ली। ये सब इतने अचानक हुआ कि कम से कम 30 सेकंड तक राष्ट्रपति के अंगरक्षकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
बॉब जोविंस बताते हैं कि सादात के अंगरक्षकों की ओर से जवाबी कार्रवाई थोड़ी देर से शुरू हुई थी।
The response from security was incredibly limited. Partly, I suspect, because many of the soldiers on duty had no ammunition.
सुरक्षा बलों की तरफ से इसका जवाब बहुत संकुचित तरीके से दिया गया। बहुत से सैनिकों के पास तो कोई हथियार ही नहीं थे और मैं समझता हूँ कि उनमें से बहुतों को ये समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से भी सैनिकों को अपने ऑटोमैटिक हथियारों में लाइव मैगजीन लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी।
मिस्र की वायुसेना के विमानों की कलाबाजी के बाद तोपखाने की बारी थी। जब एक ट्रक अचानक परेड के रास्ते से हटकर खड़ा हो गया तो स्टैंड्स पर बैठे दर्शकों ने समझा कि शायद ट्रक खराब हो गया है। हिकाल लिखते हैं,
पहली बार दर्शकों को तब ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है जब उन्होंने हवा में दो ग्रेनेड फेंके जाते देखे। इसके बाद गोलीबारी शुरू हो गई। सादात के सबसे नजदीक उनके अंगरक्षक ब्रिगेडियर अहमद सरहान थे। बाद में उन्होंने जांच आयोग को बताया कि मैं राष्ट्रपति की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा, राष्ट्रपति महोदय नीचे झुकिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनका पूरा शरीर खून से लथपथ था। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाली और उस दिशा में 5 फायर किए जिधर से गोलियां आ रही थीं। खालिद और अब्दुल सलाम दोनों के पेट में गोलियां लगीं, लेकिन उन्होंने इसके बावजूद सलामी मंच पर गोलियां चलाना जारी रखा।
इस बीच बॉब जॉविन जमीन पर लेट चुके थे। उनके बेटे स्टैंड के पीछे जाकर छिप गए थे।
When I hit the deck, they ran around the back of the stand and hid underneath it, I think. And the shooting seemed to go on for quite a long time.
जब मैं अपने को बचाने के लिए नीचे गिरा तो बच्चे पीछे के स्टैंड्स की तरफ दौड़ते हुए चले गए और उनके नीचे छिप गए। मेरे ख्याल से गोलियां काफी देर तक चलीं। बाद में ही हमें पता चल पाया कि इस घटना का उन पर कितना बुरा असर पड़ा था।
उधर सादात की पत्नी जेहान सादात सलामी मंच के ऊपर की एक खिड़की से ये परेड देख रही थी। उन्होंने बीबीसी को बताया,
When it happened, my bodyguard pushed me because the bullets were coming in the window. And I said, What are you doing? He said, This is my duty, madam. And really, he saved me. When the bullet stops and the fire stops, I rushed to the window again.
जब ये शुरू हुआ तो मेरे अंगरक्षकों ने मुझे धक्का दे दिया क्योंकि गोलियां खिड़की की तरफ आ रही थीं। मैंने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये हमारा कर्तव्य है मैडम, हमारा काम आपकी सुरक्षा करना है। जब गोलियां चलना बंद हुई तो मैं खिड़की की तरफ भागी ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाई। मैं सीधे अस्पताल गई, वहां मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। अस्पताल लोगों से भरा पड़ा था, डॉक्टरों का प्रमुख वहां मौजूद था। मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। उन्होंने कहा, मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता। जब उन्होंने ये कहा तो मैं समझ गई कि क्या हुआ है।
जब जॉविन्स परेड स्थल से अपनी कार से बीबीसी दफ्तर की तरफ भागे तो उन्हें पता नहीं था कि अनवर सादात जीवित हैं या नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद मिस्र के तत्कालीन उपराष्ट्रपति हुस्ने मुबारक ने टीवी और रेडियो पर ऐलान किया,
मिस्र अरब देशों और पूरी दुनिया को ये बताते हुए मेरी जीभ को लकवा मार गया है और मैं भावनाओं से ओतप्रोत हूँ कि हमारे हीरो और योद्धा अनवर अल सादात हमारे बीच अब नहीं हैं।
आखिर क्या वजह थी कि एक जमाने में अरब जगत के हीरो रहे अनवर सादात को इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद ने अपने हमले का निशाना बनाया? प्रोफेसर आफताब कमाल पाशा जेएनयू में प्रोफेसर हैं और उन्होंने अनवर सादात पर खासा शोध भी किया है।
मैं मिस्र में रहा हूँ 5 साल मेरे पीएचडी के लिए और डिप्लोमेट बन के भी रहा, और उस ग्राउंड से जो परेड गुजरा और जहाँ सादात की हत्या हुई, मैं वहाँ कम से कम 50-60 बार तो आया गया हूँ। तो जब भी गुजरता तो वो मंजर मुझे मेरे आंखों के सामने आता था। मिस्र में 80% मुसलमान हैं, तकरीबन 20% कॉप्टिक क्रिश्चियंस हैं। 1926 से एक इख्वानुल मुस्लिमीन बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड ग्रुप के वो एक्टिव है। हालांकि मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी था वो अप टू 52 किंग फारूक के दौरान, लेकिन सबसे ताकतवर, सबसे कार्डर बेस्ड जो पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन उभर के मिस्र में आई थी वो इख्वानुल मुस्लिमीन, और ये बहुत पॉपुलर हो गए फ़लस्तीन की जंग में। और जब नासिर उभर के आए लीडर, मिलिट्री लीडर, उन्होंने बहुत कड़ी पॉलिसी अपनाए क्योंकि उन पे अलेक्जेंड्रिया में हमला हुआ था और वो इख्वान अल मुस्लिमीन पे जिम्मेदारी थोपे थे। और 1955 से 70 तक जब नासिर सत्ता में थे तो हज़ारों की तादाद में इख्वान अल मुस्लिमीन के लोगों को या तो जेल में डाल दिया गया था या मार दिया गया था या साफ तौर पे उनको सहारा में ले जाके डाल दिया गया था जहाँ से वो बिल्कुल वापस नहीं आए। और जब सादात सत्ता में आए तो कई लोगों को उन्होंने रिहा कर दिया और सादात बैलेंस करने के लिए लेफ्ट को उनका भी सपोर्ट लेने गए। और ये इस्लामिक जिहाद उसी में से एक ग्रुप है, اخوان المسلمین سے، جو کہ ان کی پالیسی اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف اور جس طریقے سے وہ عرب معاملوں میں مصر کو آئسولیٹ کرتے تھے، ان سب کو لے کے وہ ناراضگی اپنے 6 اکتوبر کو سادات کے خلاف ہتیا کر کے انہوں نے بتا دی۔
انور سادات کی پتنی جیحان کا ماننا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ شانتی سمجھوتا کر انور سادات نے خود اپنے ڈیتھ وارنٹ پر ہستاکشر کیے تھے۔
سنس مائی ہسبینڈ وینٹ ٹو اسرائیل ایوری ٹائم ایوری ڈے ایوری منٹ ہی گوز آؤٹ آف دا ہاؤس فار میٹنگ فار سم تھنگ آئی آلویز بلیو دیٹ ہی ول ناٹ کم بیک دیٹ ہی ول بی کلڈ۔
جب سے میرے پتی اسرائیل گئے تھے، ہر بار، ہر دن، ہر منٹ، جب بھی وہ کسی وجہ سے یا کسی بیٹھک میں بھاگ لینے باہر جاتے تھے، مجھے یہی اندیشہ رہتا تھا کہ وہ واپس نہیں آ پائیں گے اور انہیں مار دیا جائے گا۔ انہیں کئی دھمکیاں ملی تھیں کہ انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ ان کو اس کا پتہ تھا، مجھے اس کا پتہ تھا، لیکن میں اس بارے میں ان سے بات نہیں کرتی تھی کیونکہ میں ان کا منوبل نہیں گرانا چاہتی تھی۔
5 لوگوں کو سادات کی ہتیا کی سازش رچنے اور ان پر گولی چلانے کے لیے موت کی سزا دی گئی۔ جیحان سادات اس سمے 85 سال کی ہیں اور ان کی گنتی مصر کے بڑے مانوادھکار کارکرتاؤں میں ہوتی ہے۔ باب جووینز بی بی سی کی نوکری چھوڑ چکے ہیں اور ان کے بیٹے، جو ان کے ساتھ اس پریڈ میں گئے تھے جہاں سادات کی ہتیا ہوئی تھی، اس سمے مصر میں رہ کر نوکری کر رہے ہیں۔ ریحان فضل، بی بی سی، دلی۔
ویویشنا کا یہ انک آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے ضرور ساجھا کریں۔ اور اب بات بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ راجکوٹ میں کھیلے جا رہے ٹیسٹ میچ کی، جہاں کپتان وراٹ کوہلی کے علاوہ دوسرے دن رویندر جڈیجا کا بھی بلا بولا، بعد میں گیند باز بھی چمکے اور مہمان ٹیم پر شکنجا کس دیا۔ سنیے آج کے کھیل کی رپورٹ۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں ہوں جوتکا سنگھ۔ راجکوٹ ٹیسٹ کا دوسرا دن پوری طرح سے بھارتی ٹیم کے نام رہا۔ 364 رن بنا کر اور 4 وکٹ کے نقصان کے بعد آج پھر سے ٹیم انڈیا کھیلنے کے لیے میدان میں اتری، جہاں وراٹ کوہلی نے 139 رن بنائے اور رویندر جڈیجا کی شتکیہ پاری کی بدولت 9 وکٹ کھو کر 649 رن پر پاری گھوشت کر دی۔ اور اس کے بعد دن کا کھیل ختم ہونے تک گیند بازوں نے ویسٹ انڈیز کے بلے بازوں پر شکنجا کس دیا اور 94 رن پر 6 کھلاڑیوں کو پیویلین واپس بھیج دیا۔ ویسٹ انڈیز کی ٹیم ابھی بھی پہلی پاری کے آدھار پر بھارت سے 555 رن پیچھے ہے۔ ویسٹ انڈیز کی خراب شروعات تو ہوئی ہے، آئیے جانتے ہیں کیا کہنا ہے ورشٹھ کھیل پترکار وجے لوکوپلی کا ویسٹ انڈیز ٹیم کے بارے میں۔
1994 میں لاسٹ ویسٹ انڈیز نے ٹیسٹ میچ جیتا تھا، اس ٹیم میں برائن لارا ہوتے تھے اور اس کے بعد انہوں نے 8 ہی ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں بھارت میں۔ امید بہت ہی کم ہے انٹرنیشنل، اگر آپ سرکٹ پہ دیکھیں تو ویسٹ انڈیز بڑا ڈیکلائن ہوا ہے، جو ان کا اتنا اچھا ریپوٹیشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ پر جیسن ہولڈر جو کپتان ہے، ان کے بڑی امید سے لائے ہیں کہ شاید ان کو کوئی اچھے پلیئرز مل جائیں اس میں سے، پر وہ مشکل ہوگا کیونکہ ایک اوور نائٹ آپ ایک ٹیسٹ ٹیم نہیں کھڑی کر سکتے ہیں۔
اور اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو آج وراٹ نے جڑا 24واں ٹیسٹ شتک، اس دوران انہوں نے 7 چوکے جڑے۔ یہ وراٹ کے انتراشٹریہ کریئر کا 59واں شتک ہے، جس میں سے 30 شتک بطور کپتان 134 پاریوں میں آئے ہیں۔ کھیل سماچاروں میں آج اتنا ہی۔
اور چلتے چلتے مکھیہ سماچار کلدیپ مشر سے۔
بی بی سی سماچار۔ بھارت اور روس کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا ہے جس کے تحت بھارت روس سے سطح سے ہوا میں مار کرنے والا S-400 میزائل سسٹم خریدے گا۔ روس سے ہتھیار نہ خریدنے کی امریکی چیتاونی کے باوجود بھارت نے یہ سمجھوتا کیا ہے۔ اس سال کا نوبل شانتی پرسکار کانگو کے مہیلا روگ وشیشج ڈینس مکویگے اور یزیدی مہیلا ادھیکار کارکرتا نادیا مراد کو ملا ہے۔ نادیا کو یہ پرسکار بلاتکار کے خلاف جاگرکتا پھیلانے کے لیے دیا گیا ہے۔ انڈونیشیا کے ادھیکاریوں کا کہنا ہے کہ بھوکمپ اور سونامی سے پربھاوت ہوئے پالو شہر میں ایک سرکاری رہائش عمارت کے ملبے میں 1,000 سے بھی زیادہ لوگ دبے ہو سکتے ہیں۔ اس آپدا میں 1,400 سے زیادہ لوگوں کی موت کی پشٹی ہو چکی ہے۔ پاکستانی پرشاسن نے بتایا ہے کہ پورو پردھان منتری نواز شریف کے چھوٹے بھائی اور مکھیہ وپکشی نیتا شہباز شریف کو بھرشٹاچار کے ایک معاملے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ فرانسیسی پولیس انٹرنیشنل پولیس سنستھا انٹرپول کے ادھیکش کے لاپتہ ہونے کے معاملے کی جانچ کر رہی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ چینی ناگرک مینگ ہونگ وئی نے پچھلے مہینے چین کے لیے اڑان بھری تھی۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اپنے سعودی عرب میں اپنے ایک سہیوگی پترکار کے لاپتہ ہونے پر ورودھ سوروپ اپنا ایک کالم خالی چھوڑا ہے۔ بی بی سی سماچار۔
दिन भर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे राजेश चौहान। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।